खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, आज सब बहन भाइयों को सुबह का सलाम और खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने फिर मुमकिन किया कि हम सब इकट्ठे हों और उसके कलाम में से सीखें। आप सबकी दुआओं के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि खुदावंद अजीब तौर से इस मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो आए हम सब बहन भाई, बुजुर्ग, बच्चे खुदा के हुजूर झुकें और खुदावंद के फजल के लिए उसका शुक्र करें। आए हम सब खुदा के हुजूर झुकें। कादरे मुतलक खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल, तेरे रहमत से पुर हैं। हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज इस वक्त के लिए जो तूने हम सबको बख्श दिया। हम सबको बड़ी बरकत दे। आज हम जो कुछ भी सीखें, जो कुछ भी पढ़ें तेरे कलाम में से, हम सब के लिए बरकत का, तरक्की का, हौसला फजाई का वसीला ठहरे। यीशु मसीह के नाम में हम सबको इस्तेमाल कर ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जो बहन भाई कलामे खुदा पढ़ सकते हैं वो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाप, हम उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे, 5वीं आयत से 10वीं आयत तक। और आज चंद एक बातें 8वीं आयत में से सीखेंगे। और यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल, जैसे कि हम सीख रहे हैं हमारी रूहानी जिंदगी के बारे में, हमारी बुनियाद के बारे में, कि हम कौन हैं, हमें मसीह यसू में क्या कुछ हासिल है। क्योंकि जिस जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जमीन, ये धरती जिसे कहा गया है, जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, दुखों, मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों से पुर है। इसलिए हमें इस दौर में ईमान के वसीला से चलने की जरूरत है, ना कि आंखों देखे पर। सो पालूस रसूल यहां पर 5वीं आयत में हमें सिखाने के लिए कहता है, जब तुम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। ये हमारी मसीह में हालत, जिसके बारे में हम सीख चुके हैं, रूहानी तौर पर जिंदा किया, रूहानी हालत। तुमको फजल ही से निजात मिली है, जिसके बारे में हमने सीखा कि खुदा का फजल है जो हमें निजात देता है, छुटकारा देता है, रहाई देता है। और मसीह यसु में शामिल करके उसके साथ जलाया, और खुदा ने यसु मसीह में हमें उसके साथ शामिल करके उसके साथ हमें जो नेहमतें, बरकतें और वो आसमानी तमाम नेहमतों से नवाजा, जो हमारे जहन से, हमारी सोच से कहीं बालातर है। और क्या किया? और मसीह यसु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। ये ईमानदारों की वो हालत है, जिसके लिए यसु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं जाके, ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जब वापस आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकानात हैं। वो जगह, वो खूबसूरत खुदावंद की हजूरी, जहां पर ईमानदार बैठेंगे। ईमानदारों को मुख्तलिफ इख्तियार, मुख्तलिफ ओहदे मिलेंगे। और ये सब कुछ किस बात पर है? खुदा के फजल और हमारी इस जमीन पर जिंदगी गुजारने पर, कि हम किस तरह उसके लिए जिंदगी गुजारते हैं। सो पालूस रसूल कहता है कि तुम्हें यसु मसीह में पहले ही आसमानी मुकाम हासिल है, तुम्हारा आसमान पर बहुत बड़ा खजाना है। तो 7वीं आयत में कहता है, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो यसु मसीह में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। याद रखें, हमने सीखा था कि ये खुदा के फजल की दौलत पोशीदा नहीं रहेगी, जैसा कि अब बहुत दफा हम देखते हैं कि हमारी रूहानी हालत तो पोशीदा है, लेकिन एक दौर आएगा जब यीशु मसीह जमीन पर बादशाही कायम करेगा और जमीन पर के वो तमाम कबीले, तमाम लोग, वो तमाम लोग जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, वो यीशु मसीह के लोगों को देखेंगे बादशाही करते हुए उसके जलाल में। और आप सबका, मेरा और हर उस ईमानदार का बहुत बड़ा अजर है। और इसके लिए बाइबल मुकद्दस हमें बहुत सी बातें बयान करती है कि यीशु मसीह जो दौलतमंद था, हमारे लिए गरीब बना था कि हम फजल की दौलत से नहायत दौलतमंद हो जाएं। और 8वीं आयत में, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना ईमान के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। यहाँ पर पालूस रसूल तीन वो बयान देता है, वो तीन भेद वाज़ह तौर पर जाहिर करता है कि हमें निजात मिली है ईमान के वसीला से, और ये हमारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, क्योंकि लिए इसके लिए हम काम नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा हदिया, सोना, चांदी, बर्रा या कोई ऐसी नेकी इस काबिल नहीं थी कि हमें खुदा के कहर से, उस रूहानी मौत से छुड़ा सके। तो यहाँ पर आज हम 8वीं आयत में से तीन बातें देखेंगे, ईमान, फजल और खुदा की बख्शिश। ईमान, फजल और खुदा की बख्शिश क्या है? और यहां पर पालूस क्या कहता है, तुमको ईमान के वसीला से। ईमान क्या है? ईमान का क्या मतलब है? जब हम किसी ईमान को देखते हैं तो ईमान हम बहुत दफा चीजों पर रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हम यकीन करते हैं कि ये कुर्सी टूटेगी नहीं, क्योंकि अगर टूट गई तो हम नीचे गिर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उस कुर्सी का यकीन करते हैं। हम ईमान ही से क्या करते हैं, जब सुबह सवेरे उठते हैं और किसी काम के लिए निकलते हैं तो उसमें यकीन करते हैं कि ये हो जाएगा। सो ईमान क्या है, जिसके बारे में अब्रानियों का मुसन्नफ 11वां बाप उसकी पहली आयत में बयान करता है कि ईमान क्या है। ईमान का मतलब है यकीन करना। बहुत दफा हम उसका सबूत देखते हैं, लेकिन बहुत दफा बगैर सबूत के यकीन कर लेना, किसी का एतमाद कर लेना, किसी पर भरोसा करना, किसी पर ईमान रखना। तो पालूस कहता है तुमको ईमान के वसीला से, फजल ही से निजात मिली है, ईमान के वसीला से। मिसाल के तौर पर ईमान, अगर हम किसी लकड़ी पर ईमान रखेंगे तो क्या वो लकड़ी हमें रोटी दे सकती है? हरगिज नहीं। अगर हम पंखे पर ईमान रखते हैं तो क्या वो पंखा हमारे लिए कुछ काम कर सकता है? हरगिज नहीं। तो यहां पर पालूस रसूल जो बात कर रहा है कि तुमको ईमान के वसीला से, कि तुम्हारा जो यकीन है वो किसी लकड़ी पर, किसी पत्थर पर, किसी चीज पर नहीं, बल्कि शख्स पर है। जैसे बेटा अपने माँ बाप पर यकीन करता है कि वो उसके लिए रोटी मुहैया करेंगे, वैसे ही पालूस रसूल यहां पर सिखाना चाहता है तुमको ईमान के वसीला से, फजल ही से निजात मिली है। हमें निजात किसी चीज पर यकीन करने से नहीं मिल सकती, क्योंकि पंखा हमें आजादी नहीं दे सकता, लकड़ी की कुर्सी हमें आजादी नहीं दे सकती। आप और मैं एक दूसरे पर यकीन करें, हम एक दूसरे को आजादी या छुटकारा या निजात नहीं दे सकते। तो पालूस कहता है तुमको ईमान के वसीला से, तुम्हारा जो यकीन है, तुमने जो ईमान खुदावंद यसु मसीह पर रखा है, उसके वसीला से, उसके फजल से। फजल क्या है? फजल का मतलब है बख्शिश, तोहफा, जो हम कमा नहीं सकते, जो सिर्फ हमें मिलता है। सो अबरानियों का मुसन्नफ कहता है, अबरानियों 11 बाप उसकी पहली आयत में, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतकाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान का मतलब है जो कुछ हम नहीं देखते उसका यकीन कर लेते हैं कि वो मौजूद है। जैसे हम में से कोई भी उस वक्त मौजूद नहीं था जब यीशु मसीह को सलीब पर कुर्बान किया गया, कोई भी हम में से उस वक्त मौजूद नहीं था जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, कोई भी उस वक्त हम में से मौजूद नहीं था जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, मुर्दों को, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की कुव्वत, बीमारों को शिफा दी। तो हम क्या करते हैं जब उसका कलाम सुनते हैं जिसके बारे में रोमियो 10 बाप उसकी 17 आयत में क्या लिखा है, पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह के कलाम से अगर हम सुनी सुनाई कहानियों पर यकीन करें कि वहां पर कोई शख्स है, अगर हम वहां पर जाएं तो उसके बागीचे में, उसके घर में एक मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है, ये कहानी है, सच नहीं है। इसलिए हमें याद रखने की जरूरत है कि हम कहाँ से सुनते हैं और क्या सुनते हैं। बहुत दफा जो खबरें हमें टीवी पर सुनाई जाती हैं, उसमें 50% क्या होता है, सच नहीं होता। बहुत दफा हम एक दूसरे से जो बात सुनते हैं उसमें भी सच नहीं होता। सो इसीलिए पालूस कहता है कि तुम्हारा ईमान किस तरह बढ़ सकता है, तुम्हारा ईमान किस तरह फल बढ़ सकता है, बढ़ता है और तरक्की पाता है। रोमियो 10 बाप उसकी 17 आयत, पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो पालूस यहां पर कहता है तुमको ईमान के वसीला से, और हमने मसीह का कलाम सुना के बगैर उसके निजात नहीं है, क्योंकि रोमियो का खत हमें ये बयान करता है। इमाल की किताब उसका 4 बाप उसकी 12 आयत हमें ये बयान करती है कि आसमान और जमीन के तले कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से इंसान, आदमी निजात पाए। सो क्या पालूस कहता है, ईमान के वसीला से, यानी कि हमें यीशु मसीह पर हमने यकीन किया, उसकी बात को मान लिया कि वो हकीकत है, वो सच्चा है, और किस तरह किया, क्योंकि हमने उसके कलाम को सुना। फजल से, फजल बख्शिश है जिसके लिए हम काम नहीं कर सकते, ये मुफ्त तोहफा है जो खुदा की तरफ से हमें मिला है, और निजात क्या है, छुटकारा। हम गुनाह की मंडी में बिके हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फजल से हमें निजात दी। निजात का मतलब है छुटकारा, रहाई, आजादी देना, किसी गुलाम को छुड़ा लेना। किसी को, जैसे कहते हैं कि जब कोई, मिसाल के तौर पर, कैसी मिसाल, कोई जब कैदी हो तो उसे हथकड़ी लगी हो तो क्या करते हैं, उसे जब छुड़ाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे छुटकारा मिल गया, रहाई मिल गई। तो पालूस यहां पर कहता है तुम्हें गुनाहों की जेल से, गुनाहों की मंडी से खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दी, निजात दी। और ये हमारी अपनी कोशिश से नहीं है, क्या कहता है 8वीं आयत के दूसरे हिस्सा में, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। खुदा की बख्शिश यानी कि खुदा का तरस, खुदा का तोहफा, खुदा की मोहब्बत, खुदा की शफकत, खुदा का करम, खुदा की करम नवाजी, खुदा की मेहरबानी। तो बख्शिश का मतलब ये है। और हम मेहरबानी कब करते हैं, आप जब किसी पर मेहरबानी करते हैं तो उसके बारे में ये नहीं कहते कि मैं चाहती हूं या चाहता हूं कि वो भी मुझ पर मेहरबानी करे। अगर हम ऐसा करें तो फिर ये क्या हो गया, अदले का बदला, खुदा हमसे नहीं चाहता कि हम अदले का बदला उसके साथ करें और कहें कि हाँ खुदा, तूने हम पर रहम किया, अब मैं तेरे रहम को क्या करना चाहता हूँ, तेरे रहम का कर्जा चुकाना चाहता हूँ। ऐसा हरगिज नहीं है। इसीलिए इफ्सियों 2 बाप उसकी 9वीं आयत में पालूस कहता है, और ये इमाल के सबब से नहीं, और ये इमाल के सबब से, और ये इमाल के सबब से, और ना ये इमाल के सबब से है, ठीक, ताकि कोई फख्र ना करे। हमारे काम से नहीं, हमारे अदले का बदला नहीं है। यहां पर पालूस वाज़ेह तौर पर इस बात को हमें सिखाना चाहता है, और ना इमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे, ताकि कोई अपनी छाती पीट कर ये ना कहे कि मैंने, खुदा ने मुझ पर एहसान किया और मैं उसका एहसान उतार रहा हूं। जैसे बहुत दफा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, अगर कोई हम पर एहसान करता है तो हम उसका बदला चुकाना चाहते हैं, लेकिन खुदा हम पर एहसान पर एहसान, बरकत पर बरकत, नेहमत पर नेहमत, बख्शिश पर बरकत बख्शिश देता है, हम पर अपना कर्म करता है, और हम इस काबिल नहीं कि उसको कुछ लुटा सकें। तो निजात हमें ईमान के वसीला से, ईमान किस पर? यीशु मसीह पर, ना के किसी कुर्सी पर, ना के किसी पंखे पर, ना के मुर्दा इंसान पर, ना के किसी और चीज पर, और ना ही ईमान अपनी जात पर। किसकी जात पर? खुदावंद यीशु मसीह की जात पर, कि उसने निजात का काम मुकम्मल किया जब उसने सलीब पर से ये बात कही कि तमाम हुआ। तमाम क्या हुआ था? निजात का काम। गुनाहों की जो अदालत यीशु मसीह की लगी थी, उस अदालत में यीशु मसीह मुजरिम ठहरा और हम सबको उसने रासबाज ठहरा दिया। इसीलिए पालूस रसूल कहता है, दूसरा करंथियों उसका 5 बाप उसकी 21वीं आयत में, कि यीशु मसीह जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को खुदा बाप ने हमारे वास्ते गुनाह ठहरा दिया, ताकि हम उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर खुदा की रासबाजी ठहरें, खुदा की रासबाजी हो जाएं। सो ये खुदा के रहम फजल बख्शिश का नतीजा है। इस पैगाम को हमें दूसरों तक लेकर जाने की जरूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, इस सादा पैगाम को दूसरों तक लेकर जाएं, कि हमें ईमान के वसीला से जो तेरे बेटे यीशु मसीह पर है, फजल से जो तेरी बख्शिश और रहम है, निजात मिली है, गुनाहों से छुड़ाया है, और ये तेरा तोहफा है, तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। सबको छू बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।